ഓം ശാന്തി. एक बार हम सभी मिल करके उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसे कि यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साथ सभी बच्चे बोला करते थे. अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि. इस संसार को एक खेल कहा गया है और यह खेल है पुरुष और प्रकृति का. और इस पुरुष और प्रकृति के खेल में हम सभी खेल खेल रहे. कोई भी खेल होता है तो उस खेल में हमेशा एक जीतता है तो दूसरा हारता है. और इस प्रकार से जो जीतेगा वो तो खुशी मनाएगा, जो हारेगा वो खुशी मनाने के स्थिति में नहीं होता और वो उसका दूसरा ही स्वरूप होता है. लेकिन ब्यूटी तो तभी है, बाबा ने यही कहा है, जो बाबा कहता है कि हमेशा खुश रहो और हमेशा विजयी भव, सदा विजयी रहो. तो इसीलिए ऐसा खेल हम खेलें कि कोई हारे ही नहीं, सभी ही विजय प्राप्त करें. तो इस पुरुष और प्रकृति के खेल में अगर एक रीति से देखा जाए तो आत्मा पुरुष और पांच तत्वों से बना, प्रकृति के इन तत्वों से बना ये शरीर, आत्मा और शरीर का ये खेल इस संसार में चलता ही रहता है. आत्मा आती है, एक शरीर लेती है, खेल खेलती है, शरीर वो छूटता है, दूसरा शरीर लेती है और इस तरह ये खेल चलता ही रहता है. और अगर एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखें, बेहद के दृष्टिकोण से, तो ये पांच तत्व जो बेहद में फैले हुए हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये तत्व और एक परम पुरुष परमात्मा, तो वो भी बेहद में यह खेल चल रहा है. और ये खेल हम सब कर भी रहे हैं और देख भी रहे. तो ऐसा खेल खेलना है जो सभी जीते. ऐसा हो सकता है खेल में कि कोई हारे ही नहीं, सभी जीते? हो सकता है? बाबा तो यही कहता है कि हाँ, होता है, हो सकता है. हम सबने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, आप सबने कहानी पढ़ी होगी, खरगोश और कछुए की पढ़ी है सबने, रेस हुई खरगोश और कछुए में, तो जंगल में तो खरगोश तो तेज दौड़ने वाला, कछुआ बेचारा धीरे धीरे, तो दोनों की रेस हुई। उस रेस में खरगोश तेजी से दौड़ा और उसने सोचा अभी तो कछुआ बहुत पीछे है, रह गया, मैं थोड़ा आराम कर लूं। और परिणाम क्या हुआ हम सबने सुना है, जाना है। कौन जीत गया? कछुआ जीत गया। पहले कहते भी थे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो खरगोश को जब होश आया, नींद से जागा, तो उसने देखा कछुआ तो विनिंग लाइन तक पहुंच गया, जीतने की रेखा तक। तो उसने फिर कहा भाई कल को फिर हम दौड़ेंगे, तो कल को फिर रेस होगी। तो कछुए ने कहा ठीक है, सबने कहा। अगले दिन फिर रेस हुई, आज खरगोश ने आलस्य नहीं किया, तेजी से दौड़ा और जीत गया। तो दोनों के पॉइंट कितने हो गए? 1-1। हाँ, एक खरगोश जीता रेस, एक कछुआ जीता। तो इस तरीके से ये रेस हुई। तो दोनों ने सोचा, अगले दिन कछुए ने सोचा कि खरगोश तो तेज दौड़ने वाला है, मैं क्या करूं। तो उसे एक आइडिया आया, सबने सुनी होगी कहानी। उसने बोला कि रोज हम इधर की तरफ दौड़ते हैं, आज हम इस डायरेक्शन में दौड़ेंगे। तो खरगोश ने कहा ठीक है, जो एम्पायर था उसने भी कहा चलो ठीक है। तो इस डायरेक्शन में दौड़े। खरगोश को तो मालूम था भाई मुझे सुस्ती नहीं करनी है, तेजी से दौड़ा। कछुआ धीरे धीरे दौड़ा। आगे एक नदी बह रही थी रास्ते में, खरगोश तो वहां जाके रुक गया। कछुआ धीरे धीरे आया और उसने खरगोश को देखा, एक स्माइल दी कि हाँ बच्चों, वो तो कह के से पानी में उतर गया। और कछुए ने पानी में जाके नदी पार की, और खरगोश भले तेज दौड़ने वाला लेकिन जमीन पे दौड़ने वाला। तो वहां पर आज कछुआ फिर जीत गया। क्यों? क्योंकि पानी में तो कछुआ ही चल सकता है, खरगोश ने। तो इस तरह स्कोर 2-1 हो गया कछुए के फेवर में। तो खरगोश भी सोचने लगा भाई क्या करें, ये तो रोज हमेशा ही ऐसा होगा, ऐसा हम क्यों ना करें कि हम दोनों ही जीत जाएं, कोई हारे नहीं, दोनों मिले। दोनों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई कि हाँ। और अगले दिन फिर रेस हुई, जंगल में ढिंडोरा पीट दिया गया कि भाई आज फाइनल रेस होगी। अभी तक तो हीट्स चल रही थी, क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल, अभी आज फाइनल होगी। सब लोग इकट्ठा हो गए और जब रेस शुरू हुई जमीन पर, तो क्या हुआ? जमीन पर तो खरगोश तेजी से दौड़ता है, तो खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बैठा लिया और बड़ी तेजी से दौड़ के दोनों नदी के तट तक पहुंच गए। क्योंकि खरगोश को ही दौड़ना था, कछुआ तो ऊपर बैठा हुआ था। और जब पानी आया तो नदी आई तो क्या हुआ, सब गैस कर सकते हैं। कछुए ने खरगोश को अपने ऊपर बैठा लिया और दोनों ने नदी को तेजी से पार कर लिया। इस तरह दोनों ही जीत गए, कोई हारा नहीं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हम सब भी रेस में दौड़ रहे हैं ना, बाबा ने कहा सब, आज भी रेस की बात है, पुरुष ये प्रकृति के तत्वों पर जीत, विजय। तो विजय तो है, माया से युद्ध है। तो इसलिए इस रेस को जीतना ही है, जीते न जीते क्या होगा कैसे होगा नहीं, हमें जीतना ही है किसी भी हालत में, ये अगर लक्ष्य रहेगा तो जीत जाएंगे। लेकिन इसके लिए कौन सा एक, इस कहानी से कौन सी शिक्षा मिलती है, कौन से विशेष गुण की आवश्यकता है? हाँ, सहयोग की। हरेक को हम अपना सहयोगी बनाते हुए चले, किसी से भी हम कंपटीशन की भावना, ईर्ष्या की, घृणा की, द्वेष की कोई ये भावना ना हो, बस ये सभी को हम सहयोगी बनाते चले। तो सहयोगी बनाते हुए चलेंगे तो क्या होगा, जीतेंगे ही, हारने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता। तो आत्माओं को तो चलो सहयोगी बना लेंगे, लेकिन कहा जाता है ना, मन जीते जगत जीत। तो मन को जीता, उसके आधार पर व्यक्तियों को जीता, लेकिन जगत जीत के लिए जगत में क्या क्या आ जाता है, जगत में पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे प्रकृति सभी चीज आ जाती है। तो हरेक को हमें अपना सहयोगी बनाते हुए चलना है, तब हम इन सबसे के आधार पर, सबके सहयोग से विजय पूर्ण रीति से प्राप्त कर लेंगे। तो ये शरीर भी तो हमारा पांच तत्वों से बना हुआ पुतला है ना, तो ये हमारा अंतिम पेपर है ये शरीर के साथ। और इसीलिए गायन है, जो बाबा भी कहता है हम सबका पुरुषार्थ किस लिए हो रहा है, कि अंत में जब हम हमारा शरीर छूटे उस समय हमें और कोई भी याद ना रहे, न कोई व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, न पदार्थ, कोई भी, अंत में बस मैं और मेरा बाबा। इसीलिए कोई भी याद नहीं रहेगा तो अंत मते सो गति हो जाएगी। लेकिन ये कैसे होगा अंत मते सो गति, जब एक तरफ तो बाबा ने बता दिया हम सब अपने पुराने संकल्पों पुराने संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य है इसमें प्रकृति के पांच तत्वों का भी बहुत मेजर पार्ट है, मुख्य पार्ट है परिवर्तन में, पांचों तत्वों का। एक तरफ धरती हिलेगी, इतने भूचाल आएंगे, चारों तरफ हाहाकार मचा होगा, बिल्डिंग गिरेंगी, ये सब अकाले मृत्यु और समूह मृत्यु इकट्ठे सब चारों तरफ वही वातावरण होगा। ऐसे अंत समय में कैसे हम अपनी बुद्धि को स्थिर रख पाएंगे, चारों तरफ कहीं पर कोई भी प्रियजन मित्र जन संबंधी उन सब की मृत्यु हो रही होगी, शरीर छोड़ रहे होंगे, हाहाकार मचा, एक तरफ पृथ्वी का, दूसरी तरफ जल का तांडव नृत्य, चारों तरफ पानी पानी, प्रलय हो गई जैसे कि शास्त्रों में भी गायन है। ऐसे समय में कैसे हम जल इन तत्वों की, ये तत्व हमारी मृत्यु का कारण न बने, ये हमारे सहयोगी बनके हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दें, ऐसा क्या हो, क्या करें कि बस अंत मते सो गति बहुत सदगति हो जाए। तो ये जो तत्व है ना, इन तत्वों का भी हमारे शास्त्रों में हमारे धर्म ग्रंथों में सभी में गायन है, ये तत्व भी देवता है, इसीलिए हम कहते हैं जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, धरती माता आदि आदि, ये तत्व भी देवता हैं। देवता देने वाले होते हैं हमेशा, देवता लेने वाले नहीं, वो हमारे प्राण लेने ऐसे नहीं। इनका गायन आज तक चला आ रहा है, तो कैसे हम इनको अपना सहयोगी बना लें, अपना मित्र बना लें कि अंत में ये हमारे मृत्यु का कारण न बने। तो आज इसी विषय पर ही हम विचार करेंगे और ब्रह्मा बाबा को के साथ रहने का हमें काफी मौका मिला 6-7 साल, और अंत में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, तो हमारा सौभाग्य था कि हम यहाँ पर ही थे मधुबन में, अंतिम दो दिन आ गए थे 17 और 18 जनवरी, और बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। और कैसे बाबा सब बिल्कुल अपनी इच्छा से बाबा ने शरीर त्याग किया, तो हम भी ऐसे भीष्म पितामह की तरह अपनी इच्छा से हम शरीर छोड़े। कोई वातावरण, कोई भले निमित्त कोई कारण बनेगा, शरीर छोड़ने का शारीरिक कोई तो कारण होना चाहिए, लेकिन हमारी इच्छा से हम शरीर, हमें पहले से आभास हो कि हाँ अब मेरा पार्ट यहाँ पूरा हुआ, बाबा हम आपके पास आए कि आए। और ब्रह्मा बाबा को हमने यही देखा, इसके लिए कैसी स्थिति होनी चाहिए वो उसका कुछ मैं वर्णन करना चाहूंगा, क्योंकि हम सभी को ऐसी स्थिति बनाकर और अपनी स्व इच्छा से इस देह का त्याग करते हुए चलना है। तो हमने देखा, वैसे पहले बाबा को जब भी मिला करते थे पहले 6-7 साल में 62 से लेकर 68 तक 69 तक, तो बाबा मिलते थे, हालचाल पूछते थे, कोई प्रश्न होता था पूछकर समाधान देते थे। लेकिन अंतिम दिन हमने क्या देखा, 17 और 18 जनवरी को जब बाबा के सम्मुख गए कि बाबा से हम ये प्रश्न पूछेंगे, ऐसा करेंगे, तो बस बाबा ने दृष्टि दी और तुरंत जैसे मन का हाल जान लिया क्या प्रश्न पूछने आए हैं, और तुरंत बाबा ने कहा, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, और बाबा ने जैसे सारी मन की बात को जान करके उसका समाधान कर दिया। ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, इन दो दिनों में लगभग 6 बार ऐसा हुआ कि जब बाबा के सम्मुख गए, कभी कोई पुरुषार्थ की बात, कभी कोई सेवा की बात का पूछने के लिए धारणा का, तो बस बाबा ने हर बार मन की बात को जान के, ये स्थिति है मन जीते जगत जीत की स्थिति। और ये कौन प्राप्त कर सकता है, जिसने अपने मन को जीता होगा, संकल्पों के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त की होगी, वो ही दूसरे के संकल्पों को भी पढ़ सकता है और उसको समझ करके उसका समाधान कर सकता है। तो एक तो ये स्थिति प्राप्त करने की जरूरत है कि मन जीते जगत जीत, अपने मन के संकल्पों के ऊपर संपूर्ण विजय हो। अगर हमारे मन में भी कोई संकल्प चलते होंगे और दूसरा कोई हमारे सम्मुख आया, तो उसके संकल्पों के साथ हमारे संकल्प मिक्स हो जाएंगे और हम उनका यथार्थ उत्तर उस व्यक्ति को नहीं दे सकते। तो इसलिए ये ऐसी स्थिति पाने के लिए एक तो ये आवश्यकता है अपने संकल्प, जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने अपनी आंखों से देखा। दूसरी बात, वैसे पहले भी हमेशा जब भी मिला करते थे ना, तो बाबा बस किसी भी बच्चे से मिलते थे, आओ बच्चे, ये चित्र भी देखा होगा आपने मधुबन में, बस जाते हैं तो बाहर ही चित्र लगा हुआ है, ऐसे हाथ फैलाए, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, और ऐसा मैग्नेटिक पावर होती थी, ऐसे शक्ति कि बस खींच करके हम बाबा की बाहों में चले जाते थे। तो उसके बाद इतना ही काफी नहीं, जैसा ही बाबा के बाहों में गए, बाबा से मिले, तुरंत विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, सोल कॉन्शियसनेस की पूर्ण स्टेज का अनुभव करते थे। अभी तो फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है हम लोगों को, लेकिन उस समय तो एक सेकंड में ही ऐसी स्थिति हो जाती थी, क्योंकि बाबा क्या इतना तेज, जैसे मैग्नेट होता है चुंबक, उसके सानिध्य में कोई भी लोहे की चीज आए वो भी टेम्परेरी मैग्नेट बन जाती है, चुंबक बन जाती है। ऐसे ही ये बाबा की भी ऐसी स्पिरिचुअल मैग्नेटिक शक्ति थी कि बस उसमें आए और विदेही हुए, फिर थोड़े समय वो उस आनंद में रहते थे, फिर बाबा ऐसे थपथपा के, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, बस जैसे देह में खींच के आते थे। कोई आत्मा देह से न्यारी अलग शरीर से छोड़ के नहीं जाती, लेकिन जैसे कॉन्शियसनेस विड्रॉ हो जाती। उसके बाद बाबा हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे, एक जाता था दूसरा आता था वो भी ऐसा अनुभव करता था। तो हमें भी ये देखना है कि हमारी भी अपनी स्पिरिचुअल पावर इतनी हो जाए कि जिस भी आत्मा को हम देखें वो अशरीरी हो जाए। आज भी, आज की मुरली में भी यही है ना, क्या है ये आज की मुरली में, बस हम खुद, चैरिटी बिगिंस एट होम, हम खुद जितने अशरीरी होंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तो जिस भी आत्मा को हम देखेंगे आत्मिक दृष्टि से, वो आत्मा भी तुरंत उस स्थिति का अनुभव करेगी। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर ये प्रयोग करना है कि मैं आत्मा, बस इस शरीर को, ये शरीर देखते हुए भी मैं आत्मा इसको देख रही हूँ, आत्मा को देख रही हूँ, भाई या बहन भी नहीं, मैं आत्मा इस आत्मा को भ्रकुटी में देख रही हूँ। ऐसी स्थिति का अनुभव बाबा कराता था, तो ये भी हमें इस स्थिति का अनुभव करना और कराना है कि जिसको भी नैन मुलाकात करे, दृष्टि दे, वो आत्मा देह भान भूल जाए, अशरीरीपन में आ जाए। और तब ही बस बाबा कहता है ना, मैं खिवैया हूं तुम सबको भी, संगम युग पर ये सृष्टि दुनिया एक बड़ा जहाज है, आज की मुरली में ही बोला ना बाबा ने, और मैं इस जहाज से ये संगम युग पर तुमको पार लगा दूंगा। खिवैया का भी है वो कहानी, रामायण की तो सबने सुनी है ना, जब रामचंद्र जी, जब कहानी में तो ऐसा ही आता है, जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो गए जंगल में राम लक्ष्मण सीता, वो तो नदी थी, नदी पार करनी थी, तो केवट था वो, तो उसने बैठाया और नदी पार करा दी। बहुत खुश हो रहा था केवट भी। तो जब नदी पार हो गई तो रामचंद्र जी था तो राजा ही संस्कार, क्या करें, तो उन्होंने अपना कोई हार वगैरह उतारा और उसको हाथ में दे दिया दक्षिणा के रूप में। तो उसने मना किया, नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, केवट ने जो खिवैया था, तो उन्होंने बहुत कहा, उसने नहीं लिया। क्या उत्तर दिया उसने, उसने कहा कि ये संसार का नियम है कि एक प्रोफेशन वाला, जो प्रोफेशन होता है उसका, वो अपने ही प्रोफेशन वाले से कभी भी कुछ फीस नहीं लेता, दान नहीं लेता। मानो एक डॉक्टर है, दूसरे डॉक्टर का ऑपरेशन करेगा, उससे पैसे नहीं लेगा। एक कोई है जो भी है, तो अपने प्रोफेशन वाले से पैसे नहीं लेते। प्रोफेशन माने जो भी उनका कर्म है। तो उसने कहा, हम, मेरा और आप भी खिवैया हो, मैं भी खिवैया हूँ, कैसे मैं पैसे ले सकता हूँ। तो रामचंद्र जी ने बोला, कहानी में ऐसा आता है कि भाई तुम तो ये नाव चला रहे हो, नदी पार करा रहे हो, खिवैया हो, ठीक है, मैं कैसे हूँ खिवैया, समझते हैं ना। जो आज बाबा ने कहा, उसने कहा बस महाराज आप इतना ख्याल रखना कि मैंने जैसे आज आपको ये नदी से पार करा दिया, जब अंत में सबका हिसाब किताब हो और मेरी भी बारी आए तो मुझे भी इस भवसागर से आप पार करा देना, कोई भी फीस नहीं लेना। तो हम सब भी मास्टर खिवैया हैं, तो इसलिए मास्टर खिवैया बन करके हमें भी इस संसार से खुद भी पार होना है और सूर्य संसार को भी पार कराने में भगवान की मदद करनी है। तो इसीलिए ये हमें देखते चलना है। एक तो मैं जो बाबा का बता रहा था ना, अंत में बाबा ने ये ऐसा स्थिति को जो प्राप्त किया, और अभी एक तीसरी बात, 18 जनवरी को सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई, सबको योग कराया और पूरा योग करा करके बस बाबा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के चले गए। उसके बाद बाबा ने यहाँ पर ईशु दादी हैं, आप सब भी मिलते होंगे, शुरू से ही यज्ञ का बाबा की वो जैसे पिए, अभी तो 93 ईयर की हैं लेकिन अभी भी एक्टिव हैं। कल भी ऊपर गए थे, परसों भी, कल ज्ञान सरोवर का, ग्लोबल हॉस्पिटल का ध्वजारोहण था, परसों पांडव भवन का और म्यूजियम का, उन सब में भी यहाँ से दादी जी वो गए थे। तो ईशु दादी शुरू से ही बाबा के पीए के रूप में बाबा पत्र लिखते थे, तो बाबा तो सिंधी में पत्र लिखते थे, लाल अक्षरों में पत्र लिखते थे, तो उसके बीच में अब सिंधी तो सबको आती नहीं, हम भी पत्र लिखा करते थे तो बाबा का जब जवाब आता था तो सिंधी में लाल लाल अक्षरों में बाबा लिखा करते थे और उसके बीच की लाइनों में नीले अक्षरों में उसका हिंदी अनुवाद करके पत्र का उत्तर आया करता था। और बस ऐसे पत्र होते थे बाबा के कि पत्र पढ़कर भी दिनों तक बस खुशी का नशा चढ़ा रहता था। बस अपने हाथ से बाबा सदर्शन चक्रधारी नूरे रतन और बाबा सारे टाइटल ब्राह्मण कुलभूषण सब टाइटल लिख करके ऐसे नशा चढ़ा दिया करते थे और फिर बाबा पत्र में जो भी डायरेक्शन देनी होती थी वो दिया करते थे। तो उस दिन बाबा ने 18 जनवरी को ईशु दादी को बोला, हाँ कल परसों भी था ना पत्र का, हाँ बाबा पत्र लिखते हैं तो उंगलियां भी जैसे गिर जाते हैं, सुना मुरली में, तो तब तो इंटरनेट और ईमेल ये सब होते नहीं थे और इतने बच्चे होते थे, पत्र आते थे, तो बाबा हर सप्ताह में दो दिन सबको बैठ के पत्रों के उत्तर लिखा करते थे। तो उस दिन बाबा ने बोला ईशु दादी को, बच्ची आज जितने भी पत्र हैं पेंडिंग सबके उत्तर लिखवा लो, कोई भी पत्र रह ना जाए, क्योंकि बाबा को तो अंदर से आभास हो रहा था कि आज साकार में मेरा ये अंतिम दिन है। पूरे दिन इतने ऐसे इंडिकेशंस थे। तो बाबा ने सारे के सारे पत्र लिखे और पत्र लिख करके बाबा ने पूरा अपना वो काम उतार दिया जिससे किसी को भी बच्चे को ये संकल्प ना चले, मैंने तो बाबा को पत्र लिख के ये पूछा था, मेरा जवाब तो आया ही नहीं, ऐसा संकल्प ना रहे। फिर अभी कल ही वहां पर ना परसों पांडव भवन के साथ म्यूजियम का भी उद्घाटन था, तो नक्की लेक के पास जो म्यूजियम है, तो तब वो बिल्डिंग ले या न ले ये बात चल रही थी, तो वहां पर प्रदर्शनी वगैरह लगाई थी, तो बाबा ने उसके सामने तो बाबा ने बोला उस दिन 18 जनवरी को ही कि भाई उस बिल्डिंग को सेवा के लिए ले लिया जाए और फाइल पर हस्ताक्षर करें। तो देखो ये भी बचा हुआ काम था, जो वैसे सारे काम पूरे करके बाबा, और ये काम भी बाबा ने पूरा किया। नहीं तो होता क्या है, अंत समय जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो या तो कोई व्यक्ति याद आएगा जिससे बहुत स्नेह है, प्यार है, या जिससे कि थोड़ा अच्छे संबंध नहीं है वो भी याद आने की संभावना है, या कोई ऐसे पेंडिंग काम, कोई काम अधूरे रह गए हैं। बस आत्मा को तो लगेगा भी मैं शरीर छोड़ रही हूँ, जा रही हूँ, अरे ये काम तो रह गया, ऐसा ये तो मुझे कर देना चाहिए था। तो इसीलिए अगर कोई भी काम पेंडिंग रहा हो, विल करनी बाकी हो, किसी को कोई भी बात कहनी करनी, वो सब भी हम धीरे धीरे निपटा के पूरा कर लें, नहीं तो अंत समय उन बातों के याद आने की संभावना है। और वो याद आ गए बात तो बस अंत मते सोगति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। तो बाबा ने भी वैसे सारे निपटाए हुए थे, ये जो काम था ये भी रहा हुआ था, ये भी निपटा लिया। और बाबा ने रोज रात को क्लास होती है 9 बजे, उस दिन बाबा ने 7 बजे ही बोला बच्ची आज बाबा क्लास कराएगा जल्दी। और एक भाई है जमुना प्रसाद भाई, उनको बोला तो उन्होंने भी सब जगह बता दिया बाबा आज 7 बजे जल्दी क्लास होगी, सब भोजन करके क्लास में आ जाए। ये विशेष इंस्ट्रक्शन थी, सब भोजन करके आए रात्रि का, तो ये भी सबको जैसे इंडिकेशन दे दी भोजन करके आए, नहीं तो उस समय तो बहुत जल्दी क्लास 9 बजे की बजाय 7 बजे बाबा ने की। तो उस दिन बाबा ने जो क्लास कराई, बाबा को एक बार भी वैसे खांसी नहीं आई, हमेशा नहीं तो गला साफ करने की आवश्यकता रहती थी, ये कफ वगैरह तथा कभी खांसी आती थी, लेकिन एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, जो इस बात का लक्षण है कि शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, और जैसे सब कर्म भोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद हम भी सामने ही बैठे हुए मुरली सुन रहे थे बाबा के सम्मुख हिस्ट्री हॉल में 18 जनवरी को। तो बस बैठे बैठे हमारे मन में एक संकल्प आया, आप सब तो अपने ही हो तो बता देते हैं कि संकल्प आया कि बाबा कुछ बोले हमारे पुरुषार्थ, हमारे बारे में। और तो बस हमें संकल्प करने की देर थी, तो जैसे कहते हैं ना भक्ति में, भक्त के मन में संकल्प उठा और भगवान ने पूरा किया, भगवान के पास तो एक ही है कौन सा अक्षर, तथास्तु, जो भी हो। तो बस ऐसे तुरंत ही बाबा ने बस कुछ महावाक्य उच्चार दिए, हमारे लिए बहुत अच्छे मधुर महावाक्य है, शक्ति से भरपूर। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जो मैंने बताया पहले भी कि जब आत्मा कर्मातीत स्थिति में होती है तो कहीं से भी कोई भी भक्त की, कोई भी व्यक्ति की इच्छा होती है, कोई संकल्प होता है, उस संकल्प को जानकर तथास्तु उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। और इस तरह बाबा कह के हिस्ट्री हॉल में दरवाजे तक गए, सब बच्चों को बहुत अच्छी तरह दृष्टि दी, दादी जी भी सामने बैठे हुए थे, दादी प्रकाशमणि जी, और बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये अक्षर इतने 33 साल में पहले कभी 1936 से लेकर 69 तक ये अक्षर कभी नहीं बोले बाबा ने, बच्चों से विदा लेता है, छुट्टी लेता है, बस गुड नाइट या गुड मॉर्निंग कह के बाबा चले जाते थे। उस दिन बाबा ने ये कहा, और बाबा कमरे में गए, दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने जैसे छुट्टी ली, विदा ली। तो ये सारे शरीर के हिसाब किताब तो बाबा पूरे करके चले गए, लेकिन प्रकृति जीत कैसे बने वो उसके बाद आभास हुआ कि बाबा का शरीर 18 जनवरी की रात को रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा के शरीर में कहीं भी कुछ कालापन नहीं आया, कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया, कुछ भी नहीं, लेकिन वैसे ही शरीर। और जब बाबा को स्नान कराया सब वरिष्ठ भाई उन्हें मिलकर के, वो तो बाबा के शरीर में काफी हद तक जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी थी, जो इस बात का प्रतीक है कि ये पांच तत्वों से बने हुए इस शरीर को भी, पुतले को भी, इस पर भी पांच तत्वों पर बाबा ने कैसे विजय प्राप्त कर ली। और उसी पर ही और अभी हम चर्चा करेंगे कि बाबा ने तो प्रकृति जीत बन गए, लेकिन कैसे हम बच्चों को भी प्रकृति जीत बनना है। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही हमारा सबसे निकट का साथी है, चाहे हम कोई भी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जन्म लें, लेकिन शरीर तो होगा ही, शरीर के बिना तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। तो कैसे हम इन तत्वों को भी अपना बना दें। और ये तत्व इवन किसके लिए कहा जाता है, रावण के लिए भी कहा जाता है कि उसने भी तत्वों को अपने चारपाई के खूंटे से बांध करके रखा हुआ था। यानी कि ये जो तत्व हैं, इन पर विजय प्राप्त करना, ये हम बच्चों का साथ में और लक्ष्य होना चाहिए। और ये कैसे होगा साथ में, कि ये जो तत्व है ना, इन तत्वों को हम कैसे अपना सहयोगी बना लें, मित्र बना लें। बाबा का देखा बस वो शरीर ऐसे ही चमकता हुआ, तो इनके लिए इन तत्वों को देखो, जिनके साथ मित्रता होती है, एक तो बाबा रोज कहता है इनको भी रोज योगदान करो, तो कुछ मिनट, जैसे हम सब योग अपने लिए योग करते हैं पुराने संस्कारों को भस्म करने के लिए, कोई मित्र संबंधी आदि कोई कठिनाई में होता है उनको भी योगदान करते हैं, कभी कोई परिस्थिति ऐसी आती है, बाबा कहता है योग करो, वो जो विपरीत परिस्थिति है वो खत्म हो जाएगी, सबके लिए करते हैं। ऐसे ही तत्वों के लिए भी पांच तत्व को एक एक को आह्वान करके, एक तो उनको प्रतिदिन कुछ मिनट योगदान अवश्य करें। हम विजुअलाइज करें, हमारे सामने पूरा सागर है और हम जैसे सागर के साथ बस वार्तालाप कर रहे हैं, जो योग करते हैं जैसे वो वार्तालाप। बाबा ने इस पर काफी मुरलियां चलाई हैं, बहुत एक एक के ऊपर कैसे वार्तालाप करो और कैसे तत्वों को दान दो। हम लोग कैसे इन तत्वों को, जैसे एक संस्कार वाले होते हैं वो, उनमें आपस में मित्रता होती है, क्लास भी होती है, क्लास के बाद सब जाते हैं, उतरते हैं, उठते हैं, बाद में दो चार लोग आपस में जो काफी निकट के होते हैं आपस में बात वगैरह, जिनके संस्कारों में लगभग समानता होती है। तो ऐसे ही हमें भी अपने जो है ये तत्वों को हम अपना मित्र बना लें, तत्वों के संस्कार जो हैं उनके साथ हम अपने संस्कार मिलाते हुए चले। मानो जल तत्व है, हा? जिन जब इन तत्वों के साथ हम अपने संस्कार मिला लेंगे तो ये जल, ये तत्व जो हैं, हमारे मृत्यु का, दुख अशांति का कारण नहीं बन सकते, ये हमारे सहयोगी बन जाएंगे। मानो जल तत्व है, उसका क्या संस्कार है, कौन सा विशेष गुण है जल का, शीतलता, और भी जल का गुण है एडजस्टमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी का। देखो जल तत्व है, इसको अगर गिलास में लो, गिलास में सेट हो गया, कटोरी में लो, कटोरी में हो जाएगा, थाली में लो, थाली में हो जाएगा, किसी में भी, चम्मच में भी हो लो, उसमें ऐसे हर एक के साथ एडजस्ट हो जाता है। ऐसे हमारा भी संस्कार अगर ऐसा होगा कि हम हर एक के साथ एडजस्ट होकर के चल सके, कोई भी ऐसा ना हम कहे कि भाई इनके साथ तो एडजस्ट होना आसान है, उनके साथ एडजस्ट होके चलना मुश्किल है, नहीं, हर एक के साथ हम जितना फ्लेक्सिबल होंगे, एडजस्टेबल नेचर होगी, तो हम एडजस्ट होके चल सकेंगे। तो जल के साथ एक ये विशेष संस्कार मिला लिया, हमने अपना जल का गुण हमने धारण कर लिया, तो दोनों में फ्रेंडशिप हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंडशिप वही है, एक जैसे संस्कार जिसमें होते हैं उनमें फ्रेंडशिप होती है। जल में शीतलता का भी संस्कार होता है बताया, तो ऐसे ही मानो कभी कोई पुराने संस्कारों के वशीभूत होके क्रोध आ गया, कोई झगड़ा हो गया। आज भी बाबा ने कहा ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है, तो कोई अगर बोले चुप हो जाओ। लेकिन पुराने संस्कार हैं, कई जन्मों के हैं, कई बार ऐसी बात हो जाती है, उस समय ज्ञान एकदम हिट नहीं होता माइंड में, और कोई क्रोध हो गया किसी ने, हमने भी मानो क्रोध के वशीभूत होके चार शब्द बोल दिए, बाद में ख्याल आता है अरे ये नहीं करना चाहिए था, ये तो विकार है, बाबा ने तो ऐसा नहीं बोला। तो शीतलता का गुण तुरंत हम उससे निकल करके अपने शीतलता के गुण की तरफ अगर आ जाएं, आत्मा के जो शांत स्वरूप का गुण है, तो जैसे जल का भी संस्कार है, आग पर रखो बॉइल हो जाता है, उबल जाता है, उतार के रख दो शीतल हो जाता है। ऐसे ही उस संस्कार को भी धारण कर लें कि जब भी हमें इस परिस्थिति आए उसमें आ जाए। जल हमेशा आगे बढ़ता रहता है, अपना रास्ता बनाता रहता है। ऐसे पेपर तो आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, हार जीत, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये सब होंगे, लेकिन ये सब भी को भी देखते हुए हर परिस्थिति में जैसे हम आगे ही बढ़ते रहे, रुक न जाए। इसीलिए बस ये गीता में भी कहा है, स्थित प्रज्ञा, योगी की स्थिति ऐसी होती है हर परिस्थिति में समान, हार को भी जीत में बदल ले। बड़ा अच्छा किसी ने दो लाइन में कहा है, फूल होता है ना, किसी का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, फूल देते हैं जिससे स्नेह होता है, रिस्पेक्ट होती है, कि सुना होगा आपने, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन में जीतने पर तो सभी खुश होते हैं, लेकिन हार भी हो उसे हार न समझें, यही समझें ये तो मैं तो प्रभु के गले का हार हूं, और ये हार जो है ये मुझे अंततः जीत तक ले ही जाएगी। तो इसलिए हर परिस्थिति में समान, तो जल के अनेक गुण होते हैं, अभी तो समय के प्रभाव में हर तत्व के मैं कुछ गुण ही लूंगा, तो ये जल के साथ जितनी हम मित्रता करते चलेंगे, उसका शीतलता का गुण, उसका एडजस्टमेंट का गुण, उसका सदा आगे बढ़ने का गुण आदि आदि, तो क्या होगा, जल कभी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। जितनी भी सुनामी आए, फ्लड आए, बाढ़ आए, पुर आए, कुछ भी होगा, समय पर बाबा ने कहा मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूं, बस मैं सिग्नल दूं, बच्चे कैच करें और उनके पैर ऑटोमेटिकली वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। बस हमारा बाबा ट्रांसमीटर तैयार है, वो समय पर हमें चेताता है, सावधानी देता है, लेकिन अगर हमारा ये रिसीवर सेट जो है ना, ये प्रॉपरली ट्यून्ड होता है, तो क्या होता है, हम बाबा की बात को कैच कर सकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बस सेफ्टी सेफ्टी, बहुत कहानियां हैं, चाहे लाटूर का अर्थक्वेक रहा हो, कच्छ भुज का रहा हो, चाहे ये कोई सुनामी का रहा हो, बहुत ऐसी परीक्षाएं बच्चों के सामने आई, लेकिन वो बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहे जिनका बाबा के साथ प्रॉपरली बाबा ने टच किया, उन्होंने पकड़ा और आगे कदम बढ़ा दिया। तो एक तो ये जल का है, पृथ्वी का कौन सा गुण है सबसे बड़ा, पृथ्वी का कौन सा गुण है, देर रहता, ठीक है बहुत अच्छा ये भी है, लेकिन सबसे बड़ा गुण है दातापन का, पृथ्वी देती है। देखो पृथ्वी में एक बीज वो दो पेड़ निकल आएगा, वो हजार गुना करके हजार बीज पैदा हो जाएंगे, पृथ्वी से ही हमें पानी मिलता है, अनाज मिलता है, फल फूल सब्जी सब कुछ पृथ्वी देती है, दाता है। ऐसे ही बाबा कहता है, अब बच्चे आप भी दाता बनो। कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, लेकिन हमारे सम्मुख जो आए उसे इतना प्रेम दे, स्नेह दे, सहयोग दे, उसके प्रति आदर हो, हमारे ऑरा ऐसा हो, वाइब्रेशन चारों तरफ इतने पॉजिटिविटी के वाइब्रेशन हो कि जो कोई भी आए वो खाली हाथ ना जाए, बस कुछ ना कुछ लेकर ही जाए। ये सूक्ष्म चीजों में तो कोई खर्चा तो होता नहीं है, इसीलिए खास करके, और ये तब होगा जब प्रेम की भावना सब आत्माओं के प्रति हमारे मन में होगी। बस आत्मा को भी अंग्रेजी में इसीलिए सोल कहते हैं, और किसी दार्शनिक ने बड़ा अच्छा कहा है, SOUL यानी सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। आत्मा जो है प्रेम स्वरूप है, और ये प्रेम जितना हमारे अंदर होगा, ये प्रेम के आधार पर ही बाकी सारे गुण और शक्तियां वो धारण होती है। एक खुसरो बहुत पुराने दार्शनिक होके गए हैं, बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, जो तेरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जो प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में डूब गया वो तो पार हो गया, और जो इस नदी से, प्रेम की नदी से तैरकर बाहर निकल गया, अलग हो गया, वो जैसे कि समाप्त हो गया। तो वो आवश्यकता यह है कि ईश्वर के प्रेम में हम इतना डूबे हुए हों बाबा के, कि ये बाकी जितने भी सहयोग, हर जिन आत्मा के प्रति प्रेम की भावना होगी उनके प्रति ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिविटी की भावना। इसीलिए देखो अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं ना, बस दया का सागर, प्रेम का सागर चारों तरफ वातावरण में, कैसे पिन ड्रॉप साइलेंस, कैसा वातावरण हो जाता है स्नेहमयी प्रेममयी का। तो इसीलिए ये धरती का गुण धारण करो, दातापन का, धरती में सहनशीलता का भी गुण होता है, सहनशीलता का, धैर्यता का, जैसे किसी ने कहा आदि आदि। तो क्या होगा कि जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, धरती हिलेगी अंत में, बहुत सारी ऐसी बात होगी, लेकिन ये धरती हमारे मृत्यु का, अशांति दुख का कारण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि धरती का ये गुण हमने धारण कर लिया, दातापन का, ये धैर्यता का। तो ये धारण करने से क्या होगा कि समय पर धरती जैसे हमें सिग्नल देगी, हमारे पैर उधर ही बढ़ेंगे जहां बिल्कुल सेफ्टी होगी, और मक्खन से बाल की तरह निकल जाएंगे, कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। बस आवश्यकता ये है, बाबा ने बोला, क्या आवश्यकता कि बाबा जो टच करा रहा है उसको हम रिसीव कर सकें। तो ये धरती के साथ एडजस्ट, ये जो गुण है ना, जल के साथ एडजस्टमेंट का, धरती के साथ दातापन का, और विनाश के ये जो पांच तत्व कारण है ना, वायु, वायु में कौन सा विशेष गुण होता है? वायु में हल्केपन का गुण होता है। पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर ले जाती है, उड़ाती है। तो ऐसे ही वायु में दूसरी बात, अपनी कोई सुगंध नहीं होती, जिधर से वायु गुजरती है दुर्गंध से गुजरेगी, दुर्गंधमय वातावरण हो जाएगा, सुगंधी से गुजरेगी, सुगंधमय वातावरण हो जाएगा। तो ऐसे ही हम भी इतने जो आत्मा का गुण भक्ति मार्ग में गा दिया है, कौन सा? आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता। उन्होंने तो कह दिया, लेकिन सारे तो आत्मा पर ही लगते हैं। तो इसीलिए आत्मा हमारी अंत में ऐसी स्थिति में आ जाएगी जब कि कुछ भी हो रहा होगा, आत्मा उस स्थिति के प्रभाव में नहीं आएगी। हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेगी। अब बाबा किसी ने यही किया, खांसी की परिस्थिति आती थी बाबा के पास, बस बाबा के पास में ट्रांसलाइट का चित्र कृष्ण का होता था, लक्ष्मी नारायण का। बाबा कहता था, देखो बच्चे अभी आज तो ये पांच तत्व भी तमो प्रधान है, शरीर भी पुराना है, खांसी आती है, तकलीफ होती है, कल नई दुनिया में पांचों तत्व नए होंगे, कल ऐसा शरीर मिलेगा बाबा को। श्री कृष्ण की तरफ इशारा करके बाबा बोलता था, ऐसा विष्णु श्री कृष्ण, कोई कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। और बाबा बस खुशी से ना जैसे वो खग्गिया मारने लगता था। कहा खांसी की तकलीफ की परिस्थिति, आंख में भी पानी आ जाता था कई बार, और कुछ सेकंड के बाद अपनी स्वस्थिति से बाबा परिस्थिति पर ऐसे विजय प्राप्त करके बस खुशी में खग्गिया। देखो बच्चे, आप सब बच्चे भी हमेशा खुशी में खग्गिया मारो कि कल हम जाके ऐसा बनने वाले हैं। तो ऐसा हर परिस्थिति में सदा हल्के रहे। बाबा ये चाहता है, कितने हम लोगों ने तो देखा, हमें तो कई बार मौका मिला। एक बार कलकत्ते में प्रदर्शनी हो रही थी, मेला, वहाँ किसी ने आग लगा दी, सब चित्र जल गए, पंडाल जल गए। हमारे जो वकील भाई लोग थे बहुत सीनियर पुराने, उन्होंने कहा बाबा हमें केस करना चाहिए, हमारे पास प्रमाण है, कैमरे से फोटो है। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप कभी भी बच्चों पर केस नहीं कर सकता, बच्चे चाहे जो हो लेकिन बाप तो बाप ही है। ऐसी हमारी नजर हो हरेक के प्रति क्षमा की नजर। कितनी भी कोई परिस्थिति होती थी, कभी भी बदले की भावना या इसे भी दिखा दूंगा कोई ऐसी भावना नहीं। यही महान आत्माओं का गुण है, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो जो कायर होगा ना वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो महावीर होगा वो क्षमा कर पाएगा। और वो तब क्षमा कर पाएगा जब वायु की तरह हल्का रहेगा, किसी बात से भारी नहीं होगा, जब हम सदा हर परिस्थिति में हल्के रहें। और चौथा आकाश तत्व, आकाश में कौन सा गुण होता है? विशाल काय आकाश, कितना एक आकाश है जैसे। तो बस आकाश की छत्र छाया में ही सारा संसार है। देखो आकाश में ना अंत में बहुत विनाश के कारण बनेंगे, आकाश मार्ग से रॉकेट, मिसाइल्स, बम आदि आएंगे, बहुत आपके चारों तरफ हाहाकार का वातावरण होगा। लेकिन अगर आकाश की तरह हमने अपना हृदय विशाल रखा हुआ होगा, हरेक के प्रति क्षमा की भी भावना होगी तो अच्छा, हरेक के प्रति भी क्षमा की भावना होगी तो हम उसे भी आकाश मार्ग से आने वाली कोई चीजें हमारे विनाश का कारण नहीं बन सकती। और अंतिम चीज है अग्नि तत्व, सूर्य अग्नि का प्रतीक है ना, तो इसीलिए अग्नि का प्रतीक सूर्य होने से क्या है, बाबा ने भी कहा आप बच्चों को भी ज्वालामुखी योग, ऐसा योग करना है कि सारे जैसे भस्म हो जाएं। और जो ज्वालामुखी योग होगा अग्नि में, ये विशेष गुण होता है कि जो भी चीज उसमें डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही अग्नि में जो चीज डालो उसका रूप परिवर्तन, हमारे सामने जो भी आए, बाबा ने कहा है अंत में ऐसी परिस्थिति आएगी आपके सामने रोती हुई आत्मा आए, बस आपके सम्मुख आए, आपका ऐसा ज्वालामुखी स्वरूप देखें और रोती हुई आए, हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। तो ये है प्रकृति के तत्वों पर विजय, कि ये जो पांच तत्वों से हमें उनके गुण ये धारण करते हैं, करने हैं। और जितना जितना हम ये धारण करते चलेंगे, और इसीलिए व्यक्तियों ने ना प्रकृति को भी भगवान कह दिया है। भगवान शब्द देखा है आपने, इसमें क्या विशेषता है, एक एक शब्द देखो, भ यह है भूतल का प्रतीक यानी धरती का, ग गगन का प्रतीक, व वायु का प्रतीक, व के आगे जो डंडा है मात्रा है, अ वो अग्नि का प्रतीक, और न जो है वो नीर का प्रतीक, जल का प्रतीक। इसीलिए भक्ति मार्ग में प्रकृति को भी भगवान कह दिया है कि यही भगवान है। अब हम तो समझ गए हैं भगवान अलग है प्रकृति अलग है, लेकिन प्रकृति के तत्वों को अपना सहयोगी बनाकर भी हमें अंततः उनके साथ बस अपने अंतिम स्वरूप को धारण करना है और उन पर विजय प्राप्त करनी है। ओम शांति, ओम शांति।